साकार मूल्यों में एक वैद्य का या हकीम का नाम आता है। कौन सा, किस हकीम का नाम आता है? लुकमान, हकीम लुकमान। यहां तक कि कुरान में एक फुल चैप्टर सूरा 31 सूरा लुकमान के नाम से, उसका उल्लेख कुरान में भी है। ये नहीं कहा लिखा है कि वो कहां था, किस कालखंड में था, पर वर्णन जरूर है कि वो अपने बेटे से कह रहा है कि पॉलीथीज्म अर्थात अनेक खुदाओं की परस्ती ना करो, एक अल्लाह की इबादत कर। इतना वर्णन आता है। उस लुकमान का साकार मूल्यों में भी वर्णन आता है कि कोई कोई हकीम, कोई कोई वैद्य, कोई कोई डॉक्टर बड़े होशियार होते हैं। उसके जीवन में एक वर्णन है कि एक बार उसे बुलाया गया सुल्तान के पास, क्योंकि जो रानी थी वो बहुत बीमार थी, हर तरह का इलाज कर चुके थे परंतु बीमारी बेइलाज थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो लुकमान को बुलाया जाता है, तो लुकमान आता है, वो कहता है मुझे उसकी नाड़ी देखनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा, पेशेंट को तो देखना पड़ेगा, मरीज को। तो वो कहते हमारे धर्म में अलाउड ही नहीं, आप पेशेंट को नहीं देख सकते। फिर वो कहता है कम से कम मैं नाड़ी तो देखूं उसकी। वो कहता है वर्जना, नॉट अलाउड, आप हमारी किसी भी स्त्री को हाथ नहीं लगा सकते। तो कैसे ठीक किया जाए पेशेंट को बिना हाथ लगाए, बिना उसकी नाड़ी देखे? तो लुकमान कहता है कि चलो हाथ ना लगाओ, परंतु एक काम जरूर करो कि एक धागा उसकी नाड़ी से बांध दो, कलाई से, और मैं उस धागे को पकड़ के डायग्नोसिस जितना हो सके मुझसे करने की कोशिश करता हूं, क्या निदान है। तो वो रानी इस तरफ, पर्दा बीच में, और धागा उसकी नाड़ी, उसकी कलाई पे, और वो इधर आ रहा है। वो कहता है उसी से मैं पता करता हूं क्या बीमारी है रानी को। परंतु वो रानी को एक खुराफात सूझती है। वो रानी, वो धागा उसकी जो बिल्ली होती है, उस बिल्ली के पंजे में वो धागा बांध देती है। तो रानी इधर, बिल्ली, बिल्ली के पंजे को, बिल्ली पहले बहुत चिल्लाती है परंतु उसको शांत करके दूध भी पिला के लेके आते हैं, और बिल्ली के पंजे को वो धागा बांध देते हैं, और पर्दा और पर्दे के नीचे से धागा, और इधर से हकीम लुकमान। तो वो जैसे वो धागे को पकड़ता है, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आते हैं उसको और उसे समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, परंतु यहां बोलना खतरे से खाली नहीं था। राजा को ऐसे थोड़ी बोला जा सकता है कि आपकी रानी ऐसा मजाक कर रही है, तो वो कुछ नहीं कहता है, चुप रहता है। नाड़ी परीक्षण पूरा होता है, अद्भुत विलक्षण नाड़ी परीक्षण, पल्स एग्जामिनेशन। तो राजा पूछता है क्या है आपका निदान? वो कहते हैं राजा बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है रानी ने आज बहुत सारे चूहे खाए हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारी इतनी मजाल, तुम हमारी रानी को ऐसा कहते हो और उसे सजा सुनाई जाती है। तो वो कहता है सजा सुनाने से पहले आपसे विनती है एक बार पीछे जाकर देखे क्या है सत्य। तो वो पीछे जाकर देखता है तो वो धागा बिल्ली के कलई को बांधा हुआ होता है। तब तो राजा को पता चलता है कि सत्य क्या है और उसे इनाम दिया जाता है। और फिर रानी को कहते पर्दा विर्दा हटाओ, उसको डॉक्टर है उसको देखने दो और इलाज होता है। तो हकीम लुकमान का वर्णन साकार मूल्यों में आता है, जिन्होंने नहीं सुना वो अभी ताक पे रहना, मूल्यों में आएगा कभी ना कभी, आता है। जिन्होंने बहुत बार सुना है उनको पता है। तो इसका वर्णन कुरान में भी है कि वो बहुत प्रसिद्ध हकीम था। तो संसार के लोग अपने ऑक्यूपेशन में बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं, और तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? टीचर से मुलाकात, कल की अव्यक्तवाणी। तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? रूहानी गुलाबन, रूहानियत की खुशबू फैलाना, यही तुम्हारा ऑक्यूपेशन है। तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? तुम्हारा धंधा क्या है? रूहानी खुशबू फैलाना। और आज कौन सा दिन है? 1 जुलाई। 1 जुलाई कौन सा दिन है आशीष भाई? आपका दिन है आज, आज डॉक्टर्स डे है। आज डॉक्टर्स डे भी है। तो बाबा ने कहा तुम सब कौन हो? रूहानी गुलाब। टीचर्स को 3 सम्मान दिए बाबा ने, एक तो निमित्त, दूसरा न्यारा प्यारा, और तीसरा रूहानी गुलाब। गुलाब की 21 विशेषता है जिसकी हम चर्चा करेंगे कि गुलाब में 21 विशेषता है, गुलाब के फूल में। और रूहानी गुलाब में भी वो होनी चाहिए, रूहानी गुलाबों में भी वो सारी विशेषता होनी चाहिए। उसके पहले थोड़ी सी चर्चा निमित्त भाव की। निमित्त अर्थात इंस्ट्रूमेंट, निमित्त अर्थात अपना कुछ नहीं, ऑल एंड नन फिलॉसफी, ऑल और नन। ये नियम पता है मेडिकल में कई बार आता है, ऑल और नन, सब कुछ मेरा और कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब मेरा है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और मेरा कुछ भी नहीं है। भारत के प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, जब उनका 5 साल का टर्म खत्म हुआ और जाने का समय आ गया, एक छोटे सा सूटकेस लेके चले गए। लोग भर भर के ले जाते हैं, माल भर के ले जाते हैं। जब उनके जाने की टाइम आ गया तो एक छोटी सी बैग थी बस, उतना लेके चले गए। 5 साल थे इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में, पर मेरा कुछ भी नहीं है यहां का, ये भाव। यदि आज हमको अपना कमरा या अपना घर खाली करने को कहे तो कितनी बैग होगी जरा गिनना। जस्ट एक छोटा सा इमेजिनेशन, कितनी बैग हो जाएगी अगर कमरा शिफ्ट करना है। कमरा ले लो, चलो घर छोड़ो, कमरा कुछ भी ना छूटने पाए, जाना शिफ्ट करना जो भी है, हमको ये लेके सामान लेके दूसरी जगह जाना है, ये घर इधर करना है, तो हम ये सोचते छोड़ो इसके बाद जो आएगा उसके लिए छोड़ के जाते, उसको काम क्या, ऐसा नहीं सोचते हम, सोचते एक चम्मच भी छूटना नहीं चाहिए, एक पॉलिथीन भी यहां छूटना नहीं चाहिए, कई बार जाके चेक करो, मैंने तो देख लिया, तुम भी एक बार देख लो, अपने घर वालों को कहेंगे ना कि तुम भी अपने कमरे में एक बार फिर से बाथरूम में जाके देख लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए वहां। एक रीति से अच्छा भी है पर एक रीति से अटैचमेंट भी तो है, अटैचमेंट भी है वो निमित्त, अर्थात जहां कोई अटैचमेंट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई लागत नहीं, कोई लोभ, कोई चीज खींचे नहीं, कोई चीज याद ना आए, निमित्त भाव। निमित्त अर्थात निरंकारिता, क्लेश नहीं अहंकार का, ये मैं करता हूं, ये मैंने किया, ये मेरी बुद्धिमत्ता है, मैं नहीं होता तो ये सेवा ही नहीं होती, बुद्धि मैंने चलाई, प्लानिंग बुद्धि हमारे पास है, तुम होते तो बस हो गई थी ये सेवा। दिव्य बुद्धि का वरदान लेकर हम ही डायरेक्ट उतरे हैं परमधाम से। निमित्त अर्थात न्यासी, ट्रस्टी, मेरा कुछ भी नहीं, प्रन्यासी, मेरा कुछ नहीं, ट्रस्टी जैसे काम कर रहे, सब कुछ अपने आप हो रहा है, पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, मेरे नहीं है। ट्रस्टी अर्थात मालकियत का अभाव, मालकियत का अभाव, मालिक मैं नहीं हूं, मालिक वो है, मालिक वो है, सब कुछ उसका है, वो जाने। निमित्त अर्थात समर्पण, संपूर्ण समर्पण, स्वाहा किया है संकल्पों को भी। कल की वाणी में बाबा ने कहा संकल्पों को वेरीफाई करो तब सर्टिफाई होंगे, तब सेटिस्फाई होंगे अपने आप से। निमित्त अर्थात विनम्रता, नम्रचित्त। तो बाबा ने कहा टीचर अर्थात निमित्त, और निमित्त क्या है, चाबी है किसकी, सफलता की। इस निमित्त भाव को कूट कूट के भरना है अंदर, कितना कूट के, जब तक रग रग में ना समा जाए, रोआ रोआ में ना समा जाए, तब तक इस निमित्त भाव को करना है कि हमारे द्वारा ये सब हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। अगर हम ना भी रहे तो ये होता रहेगा। इस संसार में आज तक किसी के जाने से कुछ फर्क पड़ा है क्या? शम्मा तक नहीं चलती आज उनकी कुर्बत पर, बड़े बड़े होके गए वो, सिकंदर के हौसला भी आला थे, पर आज क्या है, आए और चले गए, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, आज जवानी पर इतर आने वाले कल पछताएगा। तो निमित्त, मैं नहीं हूं तो भी काम चालू रहेगा, शायद और ही अच्छे से चलेगा। दूसरी बात टीचर से बाबा ने कही न्यारापन, न्यारापन अर्थात न्यारा, ये न्यारा शब्द किसी धर्म के किसी लिटरेचर में नहीं आया। संसार में न्यारापन किसको कहते हैं, ये न्यारा है अर्थात सबसे हटके है, सबसे हटके है, ये थोड़ा अनोखा है, ये थोड़ा अजीब है, न्यारापन है, न्यारा है ये अर्थात अलग, ऑड वन आउट, ऑड है थोड़ा। बाबा ने न्यारा शब्द को डिटैच के रूप में प्रयोग किया है, तो टीचर अर्थात जो डिटैच्ड है, एक है डिटैच एक है लविंग, दोनों को मिला दिया बाबा, न्यारा और प्यारा। प्यारा बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि इस पुरुषार्थ में बहुत धोखे हैं। कौन से धोखे हैं प्यारा बनने के पुरुषार्थ में? किसी का प्यारा बनना है, किसी को जीतना है, किसी का दिल जीतना है, तो क्या करेंगे? उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसको सुख देंगे, उसको गिफ्ट देंगे, उसको खुश करेंगे, उसके पीछे लगेंगे, टाइम देंगे, मैसेज करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, चाटुकार बन जाएंगे थोड़ा सा, उसको पैसा भी लगाएंगे, और क्या करेंगे? खुश करना है अब किसको? उसकी खातिरी करेंगे, उसकी इच्छा पूरी करेंगे, उसकी अप्रगट की हुई इच्छाओं को समझने की कोशिश करेंगे, एन एक्सप्रेस डिजायर। उसके अंदर के भावों को जानने की कोशिश करेंगे, उसके तरफ अधिक ध्यान देंगे, उस पर चिंतन करेंगे, खुश कैसे हो? अगर वो नाराज हो जाए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। नाराज होंगे तो उसको मनाने के लिए टाइम देना पड़ता है, फिर मनाओ, उसके पीछे लगो, फिर उसको सॉरी सॉरी कहो, तब कहीं जाके वो थोड़ा ठीक होता है, झुकना पड़ेगा फिर उसके पीछे। तो प्यारा बनने के पुरुषार्थ में बड़े धोखे हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है। बाबा ने कहा, बाबा ने ये पुरुषार्थ तो किया ही नहीं कभी, उसने कौन सा पुरुषार्थ किया? प्यारा वो है सबका प्यारा, पर उसने पुरुषार्थ कभी किसी को प्यारा बनने का किया नहीं। उसने कौन सा पुरुषार्थ किया? उसने डिटैच रहने का पुरुषार्थ किया। जो सबसे डिटैच्ड है वो सबसे प्यारा अपने आप बनेगा। कैसी अद्भुत फिलॉसफी है ये, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। डिटैच हो जाओ, हमेशा यही सिखाया गया, एक एक को पकड़ पकड़ के खुश करो, सबसे प्यार रखो, लव योर नेबर एज थाइसेल्फ, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे तुम अपने आप से प्यार करते हो, ऐसा कहा गया। धर्मों ने यह सिखाया, धर्मों ने यह सिखाया नहीं कि अगर पड़ोसी का प्यारा बनना है तो डिटैच हो जाओ, इंटरनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट अर्थात इवन डिटैचमेंट शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन डिटैचमेंट करके प्रयोग नहीं किया जाता है, नॉन अटैचमेंट शब्द का प्रयोग है। सभी धर्म के जो लिटरेचर है उनका जो हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें नॉन अटैचमेंट शब्द है, डिटैचमेंट शब्द नहीं है, नॉन अटैचमेंट, थोड़ा सा नकारात्मक, अटैचमेंट जहां नहीं वो, तो नॉन अटैचमेंट, अनासक्त भाव, जहां है अपने आप सबसे प्यारे हो जाएंगे। तो टीचर से दूसरी बात कही, टीचर अर्थात निमित्त, टीचर अर्थात जो डिटैच्ड है, इमोशनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट के क्या क्या प्रकार है? पहला फिजिकल डिटैचमेंट, फिजिकली डिटैच रहना है। अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, फिजिकली उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, फिजिकली भी दूर हो जाओ। कोई सोचे मैं इससे डिटैच हो जाऊं और रोज उसको देखते हैं, योग में उसी को दिखता रहता है, सामने बैठा है, स्थान ही बदल दो, ढूंढने दो। कुछ दिन तक जैसे स्मोकिंग छोड़ता है कोई व्यक्ति तो कुछ दिन तलब होती है, तो यहां पर भी विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, जिससे अटैच है उससे डिटैच होने के बाद तलब होगी, उसको देखूं, उसको फोन करूं, कम से कम एक मैसेज तो करूं, मैसेज नहीं कम से कम एक इमोजी, इमोटिकॉन, हेलो हाय। एक मिस कॉल तो दे दूं बस, बताने के लिए कि मैं हूं, और कम से कम मैं नहीं, उसने तो करना चाहिए। झगड़ा हो गया दो व्यक्तियों में, अब दोनों इंतजार करते हैं कि वो करे, वो इंतजार करता है ये करे, इंतजार चालू है कि वो झुके, वो सोचता है ये झुके। अटैच, तो पहला तो है फिजिकल डिटैचमेंट, दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिटैचमेंट, बौद्धिक अनासक्ति, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअली बहुत जगह अटैच्ड है। सारे दिन भर यहां की खबर पढ़ेंगे, ये न्यूज पढ़ेंगे, कितनी सारी बुद्धिमत्ता की चीजें उसमें भरते जाते हैं, वो भी एक अटैचमेंट है, इंटेलेक्चुअली अटैचमेंट। ये मेरी सेवा है, मेरी विशेषता है, अपनी विशेषताओं में अटैचमेंट, वहां इंटेलेक्चुअल डिटैचमेंट लाना है। फिर उससे भी सबसे कठिन है इमोशनल डिटैचमेंट, कि इसमें हम बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, माँ बेटी में, माँ बेटे में, या बेटा माँ में, या पति पत्नी में, या दोस्त दोस्त में, या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी में, या टीचर स्टूडेंट्स में, और स्टूडेंट्स टीचर में, मरीज डॉक्टर में, मरीज डॉक्टर में कम अटैच होते हैं, वो भी है। पर मरीज कभी भी किसी का सगा नहीं होता है, बदलते रहते हैं। तो इमोशनल डिटैचमेंट ये भी जरूरी है। फिर स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, किसी से कोई आसक्ति नहीं है, परंतु अटैचमेंट भगवान से इतना ज्यादा है कि ईश्वरे अनुराग विषय विराग अपने आप हो गया है। ऐसा नहीं, मीरा को किसी से दोस्त नफरत नहीं है, मीरा को किसी से दुश्मनी नहीं है, परंतु ईश्वर प्रेम में ऐसी मगन है, मीरा हरि गुण गली गली गाने लगी, उसको कुछ खबर ही नहीं वो क्या कर रही है। उसकी स्थिति परम वैराग्य की है, पर उसके घर वाले नहीं समझ पा रहे उसको क्या हो रहा है। उसको समझने के लिए तो कोई जंगल में बैठा हुआ कोई साधु जो डिटैच होने की कोशिश कर रहा है वो समझ सकता है, हाँ मुझे ऐसा बनना है जो यहां घर बैठे बन गई है, और जो मैं खान पान और सब कुछ छोड़ के भी नहीं बन रहा हूं, वो वहीं के वहीं डिटैच्ड है, वो वहीं एक सन्यासी है। भोजन भवन भलो नहीं लागे, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता संसार का। हरि मने चाकर राखो जी, मुझे तुम अपने घर में चाकर रख दो ताकि मैं कम से कम तुमको देख तो सकूं डेली। चाकर रहे सु बाग लगासु, निसदिन दर्शन पासु, हरि मने चाकर राखो जी। वो स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, वो स्पिरिचुअल डिटैचमेंट है। एक होता है सोशल डिटैचमेंट, कई लोग हैं जिनका इतना सोशल कॉन्टैक्ट है, इतने सोशल कॉन्टैक्ट है, पांच विकार तो छूटने रहे यार। सुशील भाई पांच और ऐड हो गए, कौन से कौन कौन से? पहले तो पांच विकार छूट नहीं रहे और पांच नए ऐड हो गए, कौन से? फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम और और कौन सा? व्हाट्सएप तो एक है। ये सारे सोशल मीडिया के जो भी है जो लोग यूज करते हैं वो इतना ज्यादा सोशली इन्वॉल्व है, हमेशा तलाश में है दोस्त की, यूट्यूब दोस्त की तलाश में है कि कोई दोस्त लाइक्स फ्रेंड, बस उसकी तलाश में है। तो डिटैच्ड स्पिरिचुअलिटी में डिटैचमेंट बहुत आवश्यक है, बिना डिटैच हुए इसमें उन्नति हो ही नहीं सकती। कोई कहता है मैं सारे परिवार के साथ ही अटैचमेंट के साथ ही चलू, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद बाबा ने कहा तुम हो रूहानी गुलाब, स्पिरिचुअल रोज। रूहानी गुलाब अर्थात ये तुम्हारा प्रोफेशन है, रूहानी गुलाब अर्थात रूहानियत की खुशबू फैलाने वाला, रूहानी सेवा करने वाला, रूहानी गुलाब अर्थात मुरली में क्या था, तुम्हें रूहानी गुलाब बनना है। रूहानी गुलाब, गुलाब की बहुत सारी विशेषता है, सबसे पहली विशेषता है अट्रैक्टिव होता है गुलाब। तो आध्यात्मिक गुलाब, स्पिरिचुअल गुलाब, स्पिरिचुअल रोज अर्थात आत्मा आकर्षित करे आत्माओं को, और वो तभी होगा जब उसमें प्यूरिटी का बल होगा। बिना प्यूरिटी, प्यूरिटी ही हमेशा आकर्षित करेगी, बाकी और कुछ आकर्षित नहीं करेगा। चेहरा थोड़ी आकर्षित करता है, कब तक करेगा? बूढ़ा तो सबको होना ही है, चाहे कितना भी कोई सुंदर हो। आज जवानी पल इतराने वाले कल पछताएगा। तेरे चाहने वाले तुझको भुला देंगे, माँ बाप बीबी बच्चे ये सब आएंगे, यही खाक डालेंगे राख डालेंगे तेरे कब्र पर। रूहानी गुलाब कैसा होता है? गुलाब का पुष्प बहुत आकर्षित करता है, आकर्षण है। दूसरा विशेषता बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। रूहानी गुलाब कैसा होता है? सुंदरता। और सुंदरता कहां होती है? जहां सत्य है वहीं सुंदरता है, जहां सत्य की छाया है वहां सुंदरता नहीं है। असत्य जहां है वहां सुंदर, जहां आत्मा में सत्य भरा है, सच है सच, वहां सुंदरता है। ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। अंग्रेजी के सबसे महान कवि जॉन कीट्स की कविता है, ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ कॉमा ट्रुथ ब्यूटी। शायद उसे भारत कभी वो आया नहीं, पर भारत का जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसकी झलक उसकी कविताओं में दिखती है, क्योंकि ये सारे जो कवि थे अलग प्रकार के कवि थे, संसार से उपराम थे, कभी भगवान को कभी मानते नहीं थे, पर उनकी उनकी कविताओं में कुछ ऐसी झलक है अध्यात्म की जो भारत के गहरे से गहरे शास्त्रों में है। ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, वो कहता है सच्चा सौंदर्य सत्य है, ट्रुथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदरता है। सत्य सुंदर है और सुंदर सत्य है। तो रूहे गुलाब अर्थात जो ब्यूटीफुल है। तीसरा कलर, सबसे ज्यादा कलर गुलाब में आते हैं, अलग अलग प्रकार के गुलाब, ऐसे ऐसे गुलाब है कि जिसका हमें कभी वर्णन नहीं सुना होगा। ब्लू रोज, ब्लैक रोज आता है एक, ब्लैक रोज वास्तव में ब्लैक नहीं होता है परंतु डार्क रेड होता है, वो डार्क रेड रोज होता है परंतु वो दिखता है एकदम काला काला। तो कलर्स, तो यहां आत्मा के भी बहुत सारे कलर्स हो, अलग अलग कलर में स्थित होना, अलग अलग जो गुण है आत्मा के, उधर कलर्स इधर अलग अलग वर्च्यूज, इधर क्या वर्च्यूज। उसके बाद में डेकोरेशन, गुलाब की विशेषता क्या है? गुलाब किस में यूज होता है? सजावट में। हमें इस सृष्टि का श्रृंगार करना है, हम कौन है? मधुबन की सजावट है, मधुबन का श्रृंगार है अर्थात हम फूल है। तो फूलों का प्रयोग किस में किया जाता है? सजावट में किया जाता है। तो हमारा भी प्रयोग सजावट में हो, सृष्टि के सजावट में, प्रकृति के सजावट में, मधुबन के सजावट में, इस यज्ञ के सजावट में, इस परिवार के सजावट में। और भगवान सजावट के लिए कोई फूल खराब है उसको लगाएंगे क्या? कभी नहीं, रिजेक्टेड, बाहर करो इसको, उसको नीचे कहीं रख दो, पीछे नीचे छिपा दो, या तो उसकी पंखुड़ियां निकाल कर नीचे बिछा दो बस। बाहर तो नहीं फेंकता, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी, सब तो है उसके ही। उसके बाद में रूहानी गुलाब अर्थात डिवोशन, डिवोशन अर्थात भक्ति में प्रयोग किया जाता है फूलों का, सभी पूजाओं में। एक बताया सजावट, सजावट जरूरी नहीं आध्यात्मिक है, सजावट शादी की भी रहती है, सजावट मरने के ऊपर भी फूल डालते हैं कोई मरता है तो, सजावट अलग, भक्ति डिवोशन, डिवोशन में फूलों का प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रयोग गुलाब, गुलाब के पुष्पों का प्रयोग। तो रूहानी गुलाब अर्थात भगवान के चरणों में जो समर्पित है, जो भगवान के गले की माला है, जो भगवान के सिर का ताज है। फूलों का प्रयोग हर अलग अलग, वेलकम, वेलकम भी अलग है, पर ये डिवोशन में, भक्ति में अलग अलग जगह किया जाता है। श्रद्धा के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प और फल है अर्जुन, तू मुझे दो तो मैं तू उसको स्वीकार करूंगा। पत्र पुष्प और फल, पुष्प बाइबल में तीन ही फलों का, तीन ही फूलों का वर्णन आया है टोटल, उसमें से एक फूल है गुलाब का फूल, दूसरे दो ढूंढते रहना। उसके बाद में इमोशंस, गुलाब का फूल इमोशंस को दर्शाता है, भावनाओं को दर्शाता है। ओ माय लव लाइक अ रेड रेड रोज, Oh, my love like a red, red rose that is newly sprung in June. Oh, my love like a melody that is sweetly played in tune. कभी गाते हैं तुम अपने प्रियसी को कहते हैं तुम किसके जैसी हो? गुलाब के फूल जैसी हो. अभी अभी खिला हुआ गुलाब. Oh, my love like a red, red rose. अभी अभी जो खिला है. तो गुलाब के फूलों का प्रयोग किसके लिए दिया जाता है? वेलकम की बात नहीं चल रही है अभी, इश्क मोहब्बत की बातें चल रही है. इजहार, पहले इकरार था अभी इजहार हो गया. तो इकरार इजहार कैसे किया जाता है? रोज देकर. वो अलग, ये खाली इमोशंस की बात कर रहे हैं अभी हम. तो ओनली इमोशंस. तो फूल जो गुलाब का है वो इमोशंस को दर्शित करता है. उसके बाद में फ्रैग्रेंस, खुशबू. खुशबू नहीं है ना, पर कहा तो जाता है कि गुलाब में खुशबू होती है. शायद ऐसे गुलाब हमने कम देखे हैं जिसमें अधिक खुशबू है. रहती है, थोड़ी सी तो रहती है, थोड़ी सी रहती है, ज्यादा नहीं रहती है. चलो वो स्थूल खुशबू की बात नहीं चल रही, या रूहानियत की खुशबू फैलानी है, या स्पिरिचुअलिटी की खुशबू फैलानी है. स्पिरिचुअलिटी की खुशबू, बाबा ने कहा संसार में पहले कितने झगड़े हैं, केवल तुम ही हो जो खुशबू फैलाते हो. रूहानियत की खुशबू अर्थात फिजिकैलिटी के अगेंस्ट, सेंशुअलिटी के अगेंस्ट. संसार में दैहिक भान, दैहिक बातें, दैहिकता है. सेंशुअलिटी का संसार है, यहां शरीर ही शरीर सब कुछ है. ऐसे शरीरों के माहौल में, शरीरों की चर्चा जहां है, किसका शरीर सुंदर है किसका असुंदर है, उस आधार पर सब कुछ निश्चित होता है. ऐसे वायुमंडल में अध्यात्म की खुशबू फैलाना, कि आत्मा की सुंदरता देखने का भाव उनमें जागृत करना, वो है फ्रैग्रेंस. उसके बाद में ग्रो स्टॉल. गुलाब का पुष्प बहुत ऊंचा उग सकता है. उसका जो झाड़ होता है मैक्सिमम जो देखा गया 28 फुट तक ऊपर जा सकता है. मैक्सिमम रिकॉर्ड जो है ग्रोज टॉल. उसके बाद में आगे है हिप्स. गुलाब के जो फल होते हैं, फल फ्रूट, गुलाब के भी फ्रूट होते हैं, उसको कहा जाता है रोज हिप्स. रोज हिप्स उसको कहा जाता है. उसका मेडिकल यूज बहुत सारा है, हर्बल थेरेपी में, आयुर्वेदिक थेरेपी में, बाकी सब थेरेपीज में. रोज हिप्स जिसको कहते हैं, हमने भी नहीं देखे कभी, पर इसका वर्णन कई जगह आता है. बहुत सारी दवाइयां होती है उसमें लिखा रहता है रोज हिप्स. वो उसके फल है. वो एक होता है गुलाब फूल है, परंतु ये रोज फ्रूट्स, रोज के जो फ्रूट्स है उसको रोज हिप्स कहा जाता है. कुछ कुछ रोजेस में होते होंगे शायद. इसका भाव यहां पर एक ही है कि गुलाब का हर अंग यूजफुल है. इसके लिए हम भी हर प्रकार से यूजफुल हो, ऑल राउंडर, हर प्रकार से सेवा में यूज हो हमारा. उसके बाद में कि नोन एवरीवेयर. ये एक ऐसा झाड़ है, एक प्लांट है, कि संसार में ही ऐसा कोई देश होगा कि जहां ये नहीं उगता और जहां पता नहीं इसके बारे में, कोई भी ऐसा नहीं होगा. ये सबको पता है रोज. सब लाइक करते हैं वो तो है ही, पर नोन, नोन अर्थात बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत नामचीन. हाँ, किंग ऑफ, किंग ऑफ फ्लावर्स रोज ही है, लोटस, लोटस. उसके बाद में लव बाय ऑल, सभी प्रेम करते हैं उससे. और लॉन्ग लीव, बहुत लंबा जीता है. मैक्सिमम उम्र जो बताई गई है वो एक जगह बताई है 10,000 वर्ष, जो हाँ मतलब संसार के जो फिगर्स है, एक चर्च है वहां पर एक अभी भी रखा हुआ है जिसकी उम्र बताइए कि बहुत लंबा जीता है, वो बहुत लंबा जीता है. 1000 वर्ष तक जी सकता है रोज, सभी नहीं पर ये लिटरेचर में लिखा हुआ है। उसके बाद में मोर देन 100 स्पीशीज, 100 से भी अधिक उसकी वेराइटीज है, स्पीशीज अलग अलग प्रकार के गुलाब है, 100 से भी अधिक। कोई एक फूल ऐसा नहीं है संसार में जो इसकी तुलना कर सकता है, जो इतना इसके जैसा है। तो मोर देन 100 स्पीशीज। उसके बाद में एन को छोड़ दो, ओ ओल्डेस्ट, सबसे पुराने ते पुराने फूलों में रोज है, सबसे पुराना। एक तो कहा कि लंबा जीता है, उसकी उम्र यह है ओल्डेस्ट, सबसे पुराना। बहुत कहां कहां इसके अवशेष, इसके फॉसिल्स मिले हुए हैं, जिससे उन्होंने कार्बन डेटिंग से पता कराया कि यह जो है यह इतने इतने वर्षों पुराना है। सबका पूर्वज, तो हम भी सबसे पुराने हैं, ये ओल्डेस्ट है तो हम भी सबसे पुराने हैं। फिर उसके बाद में पी, पेरिनियल, सदाबहार, ऐसा कोई मौसम नहीं कि इस मौसम में खिलेगा उस मौसम में नहीं खिलेगा। रूहानी गुलाब अर्थात सदा खुश, ऐसा नहीं इस मौसम में खुश और उस मौसम में नहीं खुश, सदाबहार। लास्ट संडे की मुरली, ये संडे के लास्ट संडे की। व्यर्थ संकल्प में तूफान तेज है, और जो समर्थ संकल्प वाले हैं वो कैसे हैं, सदाबहार है, धैर्यवत अलग, सदाबहार, सदाबहार है, हरा भरा है, सदाबहार और हरा भरा। तो पेरिनियल, कोई मौसम की जरूरत नहीं है इसको कि ये मौसम होगा तो खिलेगा, वो मौसम होगा तो नहीं खिलेगा, हर मौसम में खिलता है वो। और उसके बाद अगला आर, आर से बहुत सारी चीजें, रोज वाटर, गुलाब जल, रोज से बनी हुई सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें बनती है, गुलकंद और रूह अफ़ज़ा, अच्छा हाँ, ड्रिंक्स और सेंट और इंसेंस और इंसेंस स्टिक्स और पाउडर, सोप, सब कुछ गुलाब सब में यूज किया जाता है, गुलाब से बनी हुई वो सारी चीजें। उसके बाद में एस, गुलाब में जितने 4000 से ज्यादा गीत गुलाब पर बने हुए, गुलाब पर, गुल, गुलाब, फूल, हिंदी फिल्में में तो बहुत सारे गुलाब, गुलाब कई जगह है गीत, हाँ, गजल, शायरी, नज्म, सब कुछ गुलाब पर, कव्वाली से लेके सब कुछ बहुत बना हुआ है, हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, सब कुछ गुलाब पर, बहुत सारे गीत ही गीत बने हुए, तो सबसे ज्यादा गीत गुलाब पर बने हुए, बाकी किसी फूल पर इतने फूल गीत नहीं बने, तो हम पर भी गीत बने भक्ति मार्ग में। बाबा ने कहा अब तुम तो चिंतन करते हो, तुम्हारा उधर कीर्तन होगा, फिर अभी तुम्हारी जो कीर्ति है उधर तुम्हारा कीर्तन होगा भक्ति मार्ग में। तो हम कौन है, ऐसे रूहानी गुलाब। फिर उसके बाद में सेल्स, सबसे ज्यादा सेल किसका है, रूहानी गुलाब का है, सबसे महंगा। और सेल कितने गुलाब लगते हैं, 1 ग्राम, ये इसमें और एक चीज है, 2000 गुलाब लगते हैं 1 ग्राम तेल निकालने के लिए, हाँ 1 ग्राम तेल निकालने के लिए 2000 गुलाब लगते, ऐसा फिगर है। उसके बाद है सेल्स, सबसे ज्यादा सेल्स कहां होता है गुलाब का, हॉलैंड में होता है, 28 एकड़ लैंड खाली गुलाब के लिए है, 28,000 एकड़ लैंड, जमीन जो है 28,000 जमीन में, एकड़ में गुलाब के फूल उगाए जाते, सबसे ज्यादा सेल वहां पर है उसका। और उसके बाद में सब्जेक्ट ऑफ आर्ट, आर्ट अर्थात कला, कला में गुलाब का बहुत प्रयोग किया गया, लोगों ने गुलाब के चित्र निकाले और पेंटिंग और मूर्तियां और क्या, कार्ड, वो कार्ड तो सबसे ज्यादा, कार्ड तो गुलाब का ही फूल रहता है उसमें, कार्ड दिया जाता है। उसके बाद में टी, थॉर्न्स, गुलाब में क्या होते हैं, कांटे, इससे आध्यात्मिक क्या अर्थ है, हम रूहानी गुलाब है, उस गुलाब में कांटे होते हैं, तो इधर वो नेगेटिविटी को दूर रखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट है। और क्या करते हैं? कांटे, सुरक्षा के लिए कांटे की आवश्यकता है। और क्या करते होंगे? कांटे, ये चिंतन का विषय है। थोड़ा कांटे से थोड़ा दर्द भी रहता है, कोर उसके ज्यादा छेड़छाड़ करे तो सिक्योरिटी। लास्ट 21वां वैलेंटाइन, इसको अलग से रखा है इमोशंस अलग, क्योंकि इमोशंस में बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। वैलेंटाइन, क्लियोपैट्रा, विदेश में भी दिखाया है वो एंटनी, वो क्लियोपैट्रा ने पूरा कमरा फूलों से सजा दिया था। क्लियोपैट्रा मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इंग्लिश लिटरेचर की, क्लियोपैट्रा कहा जाता है। तो ये वैलेंटाइन में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? रोज का, रेड रोज दिया जाता है। तो हमें भी बाबा को कौन सा दिन है? रेड रोज, या हम ही रेड रोज है। हम स्वयं को ही दे दे, अपने आप को दे दे, अपने आप को ही अर्पित कर दे। और सेल्स की बात, सबसे ज्यादा सेल्स अर्थात सबसे ज्यादा सेवा सबसे ज्यादा जमीन चाहिए उसके लिए, और बहुत मेहनत चाहिए। जैसे कहा ना, इतना सा तेल निकालने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता है, एक छोटी सी सेवा के लिए कितनी आत्माओं का सहयोग आवश्यकता है। एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, एक एक मिल के करेंगे ये काम, अकेले से नहीं होगा। रावण को भी हराने के लिए उसके क्या, उसने अपने भाई की सहायता ली थी, राम ने भी अपने भाई की सहायता ली थी। हम सोचते हम बिना भाइयों के कर लेंगे, तो ये टोटल कितने हो गए? 21 पॉइंट्स अबाउट स्पिरिचुअल, कहीं लिखे नहीं है ये, जस्ट इसके पहले भी एक अव्यक्त वाणी थी बहुत पहले, हाँ एक बार मेडिटेशन हॉल में बताया था ये सारी बातें, बहुत सारी, बहुत समय पहले, एक डेढ़ साल हो गया शायद। तो ऐसे रूहानी गुलाब भव, 21 मई 2018 की अव्यक्त वाणी में ये था। अच्छा, ओम शांति।
हम है रूहे गुलाब, हम है रूहे गुलाब, खुशियों की खुशबू से जग को महकाते हैं, हर हाल में खुशहाल।